नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं जनसत्ता पॉडकास्ट और ये वक्त है जानने का खेल जगत की खबरें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वरिष्ठ प्रशासक रहे अमिताभ चौधरी का मंगलवार 16 अगस्त 2022 की सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उनके निधन की पुष्टि की है। वो 58 साल के थे। अमिताभ चौधरी ने एक दशक से अधिक समय तक JSCA का नेतृत्व किया और BCCI के संयुक्त सचिव भी बने। BCCI में प्रशासकों की समिति के शासन के दौरान उन्होंने बोर्ड के कार्यवाहक सचिव के रूप में भी कार्य किया। झारखंड कैडर के IPS अफसर रहे अमिताभ चौधरी झारखंड लोक सेवा आयोग के चेयरमैन भी रह चुके थे। उनके निधन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, JPSC के पूर्व अध्यक्ष श्री अमिताभ चौधरी जी के आकस्मिक निधन की दुखद खबर मिली। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ जी ने राज्य में क्रिकेट के खेल को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिवार को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। अमिताभ चौधरी ने प्रशासन, क्रिकेट से लेकर राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाई थी। वो 1985 में IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद बिहार कैडर से IPS बने। अलग राज्य बनने के बाद उन्हें झारखंड कैडर मिला। अमिताभ चौधरी 2005 में राज्य के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो को हराकर JSCA के अध्यक्ष बने थे। फीफा ने तीसरे पक्ष द्वारा गैर जरूरी दखल का हवाला देकर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को सोमवार 15 अगस्त 2022 की रात निलंबित कर दिया। इसके साथ ही भारत में 11 से 30 अक्टूबर तक होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी भी खतरे में पड़ गई है। फीफा ने कहा है कि निलंबन तुरंत प्रभाव से लागू होगा। ये पिछले 85 साल के इतिहास में पहला अवसर है जब फीफा ने AIFF पर प्रतिबंध लगाया। फीफा ने एक बयान में कहा, निलंबन तभी हटेगा जब AIFF कार्यकारी समिति की जगह प्रशासकों की समिति के गठन का फैसला वापस लिया जाएगा और AIFF प्रशासन को महासंघ के रोजमर्रा के काम का पूरा नियंत्रण दिया जाएगा। फीफा ने कहा, इसके मायने हैं कि अंडर 17 महिला विश्व कप पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारत में नहीं हो सकता। बयान में ये भी कहा गया, फीफा भारत के खेल मंत्रालय से लगातार संपर्क में है। हमें सकारात्मक नतीजे तक पहुंचने की उम्मीद है। यदि टूर्नामेंट कहीं और आयोजित किया जाता है तो इस टूर्नामेंट में भारत के हिस्सा लेने पर भी संदेह होगा, क्योंकि देश की अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम क्वालिफाई करने के आधार पर नहीं बल्कि मेजबान होने के आधार पर इसका हिस्सा थी। अगले कुछ महीनों में यदि कुछ चमत्कारी नहीं होता है तो रविंद्र जडेजा का चेन्नई सुपर किंग्स से ब्रेकअप होना तय है। जैसा कि पहले खबरें आई थी कि रविंद्र जडेजा और चेन्नई सुपर किंग्स के टीम मैनेजमेंट के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है, लेकिन तब फ्रेंचाइजी ने ऐसी बातों को सिरे से खारिज कर दिया था। हालांकि अब ऐसा माना जा रहा है कि ऐसी खबरें हैं कि मई में इंडियन प्रीमियर लीग 2022 खत्म होने के बाद से भारतीय ऑलराउंडर और CSK प्रबंधन के बीच किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स को एक परिवार की तरह काम करने के लिए जाना जाता है। खिलाड़ी साल भर फ्रेंचाइजी के संपर्क में रहते हैं। हालांकि भारतीय टीम में वापसी से पहले NCA में रिहैब कराने वाले रविंद्र जडेजा CSK की किसी भी गतिविधि का हिस्सा नहीं रहे हैं। रविंद्र जडेजा को IPL 2022 के बीच में ही कप्तानी से हटा दिया गया था, जब प्रबंधन को लगा कि नेतृत्व का बोझ उनके खेल को प्रभावित कर रहा है। अफगानिस्तान के स्टार गेंदबाज राशिद खान ने 15 अगस्त 2022 की देर रात बल्लेबाज से भी कमाल दिखाया। उन्होंने 310 के स्ट्राइक रेट से रन ठोके। बाद में उन्होंने विपक्षी टीम के विकेट भी चटकाए। नतीजा ये हुआ है कि उनकी टीम आयरलैंड के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज में लगातार दूसरा मुकाबला जीतने में सफल रही और सीरीज में 2-2 से बराबरी हासिल की। सीरीज का आखिरी T20 मैच 17 अगस्त 2022 की रात 8 बजे से बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब पर खेला जाना है। सीरीज का चौथा मैच भी बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब पर खेला गया। बारिश के कारण ये मैच 11-11 ओवर का कर दिया गया था। आयरलैंड ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 ओवर में 6 विकेट पर 132 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की टीम 11 ओवर में 105 रन ही बना पाई। उसकी ओर से जॉर्ज डार्करेल 27 गेंद में 41 रन बनाकर नाबाद रहे। एंडी मरे ने 3 सेट तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में स्टेन वावरिंका को हराकर वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश किया। मरे ने 2 घंटे 57 मिनट तक चले इस मुकाबले में 7-6, 5-7, 7-5 से जीत दर्ज की। मरे और वावरिंका दोनों यूएस ओपन का खिताब जीत चुके हैं और इस मैच के दौरान दोनों को अपने पांव की समस्या को लेकर ट्रेनर की मदद लेनी पड़ी। पुरुष वर्ग के एक अन्य मैच में क्रोएशिया के 14वीं वरीयता प्राप्त मारिन सिलिच ने स्पेन के क्वालिफायर जैम मुनार पर 6-3, 6-3 से जीत दर्ज की। महिलाओं के पहले दौर के मैच में सोमवार को 20 वर्षीय गैर वरीय अमेरिकी अमांडा अनीसिमोवा ने रूस की 9वीं वरीयता प्राप्त डारिया कसातकीना को 6-4, 6-4 से हराया। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म होता है। अगले बुलेटिन तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।